संजय ने कहा, द्वारा सेना की व्यूह रचना देकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे तो दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा, कि पांडव की सेना को या सेना व्यवस्था को देखकर दुर्योधन आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। आचार्य द्रोण के पास वो चले गए दुर्योधन और ये शब्द कहे, ऐसे संजय धृतराष्ट्र को उत्तर में दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पर दुर्योधन का भी भय व्यक्त होता है। उन्होंने ऐसे सोचा नहीं था कि पांडव लोग इतने सारे सेना इकट्ठा करेंगे। तो एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो पांडव का सेना भी कितना अक्षौणी था, 7 अक्षौणी था। तो एक अक्षौणी मतलब 21,870 जो हाथी या घोड़े के रथ में के साथ युद्ध करते योद्धा, और ऐसा भी लिख सकते उतने सारे हाथी और घोड़े, मतलब उसके साथ में उसके योद्धा भी रहेंगे, इतने सारे योद्धा रथ है। और जो हाथी घोड़ा नहीं है, पैर में चल के इन्फेंट्री सोल्जर्स बोलते हैं ना, तो अपने पाद के तले चलते सैनिक वर्ग 1,903,350 इन्फेंट्री सोल्जर्स। हाँ, पहला वाला क्या बोला मैं, घोड़े बोला ना, नहीं रथ और रथ वाले और हाथी वाले, रथ और हाथी मतलब हाथी के ऊपर बैठ के जो युद्ध करते हैं या रथ में बैठ के युद्ध करते हैं खड़े होकर, 21,870 होते हैं। और सैनिक कितना होते हैं, 1,09,350 और घोड़े सवार जो योद्धा होते हैं 65,610। तो ये सब मिलके एक अक्षौणी बनता, ये सभी एक अक्षौणी। और घोड़े सवार कितने होंगे, 65,610। एक लाख 9,350 वो सैनिक लोग होंगे। इसको अक्षौणी बोलते हैं, एक अक्षौणी बोलते हैं, समझ में आ गया। ये महाभारत के आदि पर्व के दूसरे अध्याय में ऐसे दिया गया है, महाभारत के आदि पर्व के दूसरे अध्याय में ऐसे दिया गया। तो 7 अक्षौणी था सेना पांडवों का, वो वास्तव में दुर्योधन के समान ही है, क्योंकि दुर्योधन का 11 अक्षौणी, उसमें से 3 अक्षौणी नारायण सेना आ गए द्वारका से, है ना, और 1 अक्षौणी शल्य का था वास्तव में शल्य युधिष्ठिर महाराज के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन बीच में क्या कर दिया, दुर्योधन ने उसको ऐसा अपने राजनीतिक को उपयोग करके उनको लेकर हड़प गए, मतलब हड़प मीन्स कि उनको ले लिया अपने अपने सेना में। रास्ते में आते वक्त वो जब बहुत भूखे प्यासे थे, वहाँ पर सब सुविधा करके रख दिया था, और शल्य ने सोचा कि ये युधिष्ठिर महाराज ने यह व्यवस्था किया और उसने प्रतिज्ञा लिया, जो भी ये व्यवस्था किया है उनकी ओर से मैं युद्ध करूँगा ऐसे। उसको बाद में पता चल गया कि दुर्योधन ने ऐसे किया, तो फिर उनके पास ऐसे चार अक्षौणी सेना तो दुर्योधन को गए, नहीं तो इनका ज़्यादा शक्ति हो। और दुर्योधन भी ऐसे सोचा था कि ये लोग वनवास से अभी आए हैं, उनके पास कुछ नहीं है, अभी दुर्बल भी हो गए होंगे, कुछ फल और कुछ क्या है जड़ी मूल ऐसे कुछ खा के अभी दुर्बल हुए होंगे, ऐसे उसने सोचा। लेकिन वो लोग तपस्या करके सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेके सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके और शक्तिशाली बन गए थे। वास्तव में तीसरे स्कंध में भागवत में वर्णन आता है कि पूरा दुनिया का शक्ति उनके पास था, क्योंकि भगवान कृष्ण ही उनके पास है ना, तो इसलिए ये सब देखकर दुर्योधन को बहुत ही डर लग गया। यहाँ पर पांडवानिकम अनिकिनी मतलब क्या है, कमल को अनिकिनी बोलते हैं। अनिकम वो भी एक अक्षौणी में एक दसवा भाग होता है अनिकम, पांडवानिकम, लेकिन यहाँ पर उसको सामान्यतः यूज किया गया, सामान्यतः पांडव सेना को यूज किया गया, उपयोग किया गया। और अनिकिनी शब्द का कमल होता है, मतलब वो कमल के यूह यूह बनाया था, अलग अलग यूह होता है ना, चक्र यूह कमल यूह ऐसे, तो ऐसे उन्होंने बनाया था। उसको देखकर दुर्योधन को आश्चर्यजनित हो गया, तो डर गया वो। और फिर आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, तो संजय बोल रहे राजा कहाँ गए, वो आचार्य के पास गए। अभी दुर्योधन को यहाँ पर राजा करके संबोधित किया गया, तो वास्तव में अभी तो वो राजा नहीं था, वो धृतराष्ट्र राजा थे, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ना हे राजन, यहाँ पर धृतराष्ट्र को संजय ऐसे कर रहे, प्रभुपाद जी वो लिखते हैं वैसे अनुवाद में ना, तो लेकिन जो राजा शब्द है वो दुर्योधन को उपयोग किया गया, तो राजा दुर्योधन ऐसे बताया गया। देखिए अपने गुरु के पास गया, तो राजा इसलिए उसको उपयोग किया गया है क्योंकि वो बहुत ही ये राजनीति में बहुत ही चतुर था, दक्ष था वो। प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे, वास्तव में जो कमांडर इन चीफ होते हैं, सेनापति होते हैं, वो राजा के पास आना चाहिए, लेकिन ये राजा सेनापति के पास जा रहा है, क्योंकि अभी उसको किसी न किसी तरह सबको उत्साहित करना है, ये पांडवों का सेना देखकर ये लोग भयभीत तो ना हो जाए करके। तो ऐसे ये राजनीति में बहुत ही दक्ष था, इसलिए उसको राजा करके संबोधित कर रहे हैं। तो इस श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक अभी हम लोगों को ये दुर्योधन के राजनीति के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। और संजय धृतराष्ट्र के मन को जान लिया उन्होंने, और उनको उत्साहित करने के लिए ऐसे बोल रहे, पढ़िए उसको तात्पर्य को।
धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था।
एक और चीज, हम लोग अब पिछले श्लोक में आए भगवान कृष्ण के उपस्थिति के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी धृतराष्ट्र डर गया है क्योंकि भगवान कृष्ण भी इस तरफ है, प्रश्न उठता है, क्या धृतराष्ट्र को भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञात था? ऐसे प्रश्न उठता है ना। तो उनको मालूम था, उनको बता तो गया था। तो बार बार भगवत महाभारत में कम से कम युद्ध शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र को भगवान ने विश्वरूप दिखाया था ना, जब वो शांति दूत बनकर आए थे, उनको दिखाया था ना विश्वरूप करके। तो ऐसे महाभारत में अलग अलग जगह पर हमें जानकारी मिलती है कि कैसे धृतराष्ट्र को बताया गया था कि भगवान कृष्ण क्या है, देवोत्तम परम पुरुष है, वही परम सत्य है करके। लेकिन निश्चित ही उनका जो ज्ञान है भगवान कृष्ण के बारे में, वो अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज के जैसे तो नहीं है, और वो भक्त भी नहीं थे। तो इसलिए वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वो अंधा था। फिर
वो ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वो पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था।
तो ज्यादा पिछले श्लोक के ऊपर और ज्यादा कमेंट कर रहे थे ऊपर, ताकि हम लोग लिंक समझे। यहाँ पर संजय वो धृतराष्ट्र के मन को उन्होंने जान लिया। तो क्यों सर, क्यों ये धृतराष्ट्र ये प्रश्न पूछ रहे हैं? सिंह अपूर्व तो संजय ऐसे कैसे पूछ रहे हैं? उन्होंने क्या किया बजाय कि उन्होंने कैसे लड़ा, है ना? वो पूछना चाहते कि कैसे वो लड़ाई किया, उन्होंने युद्ध किया, उसको पूछने के बजाय वो क्या कर पूछ रहे, वो क्या किया करके, वो क्या किया करके। तो इसको संजय समझ ले, प्रभुपाद ऐसे यहाँ पर समझा रहे।
इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, वह हिरास राजा को उत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया
तो वो युधिष्ठिर महाराज के पास नहीं गए वो समझौता करने के लिए, वो आचार्य उपसंगम्य धृतरा है ना, कौन वो द्रोण, आचार्य द्रोण के पास गए वो। तो समझौता करने के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन सबको युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जा रहा है। और
उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वदा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिज्ञ व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया।
हालांकि वह दक्ष राजनीतिक के लिए योग्य है, लेकिन फिर भी वो डर गया पांडवों के सेना को देखकर। तो तीसरा श्लोक, पश्यैतां पांडवपुत्राणां आचार्य महतीं च मम यूढां द्रुपदपुत्रेण अवशिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडवपुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर देखिए दुर्योधन क्या कर रहा है, पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं च मम। तो हे आचार्य देखिए क्या हो रहा है, यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण दीनता। जो द्रुपद पुत्र है, द्रुपद का नाम ले रहे हो है ना, उन्होंने क्या किया है, आपके जो शिष्य है द्रुपद पुत्र है, उन्होंने कैसे ये सेना को रचना किए है, ऐसे उनको उत्साह रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि द्रोण को द्रुपद महाराज के साथ शत्रुत्व था। यहाँ पर द्रौपदी तात्पर्य में वर्णन कर रहे कि कैसे द्रुपद और द्रोण दोनों साथ में गुरुकुल में अध्ययन किया था उन्होंने, फिर उनके मित्रता के कारण द्रुपद ने क्या बताया आगे जाके मैं, क्योंकि वो द्रोण एक ब्राह्मण के पुत्र थे, उनके पास तो कुछ धन संपत्ति नहीं रहता है, और द्रुपद एक क्षत्रिय के पुत्र थे, मैं आगे जाके जब मैं राजा बनूंगा आपको आधा राज्य दूंगा। तो फिर जब उसको पूछने के लिए गए एक बार, जब अश्वत्थामा के पास दूध भी पीने के लिए दूध भी नहीं था तो रो रहा था अश्वत्थामा के पुत्र द्रोण के पुत्र, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने मित्र द्रुपद के पास जाऊंगा, तो द्रुपद ने उनको अपमान किया क्योंकि अभी वो भूल गया था सब कुछ द्रुपद क्या हुआ था। तो फिर जब द्रोणाचार्य भी उन्होंने सोचा इसका मुझे रिवेंज लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए, फिर जब उन्होंने प्रशिक्षण दिया कौरव और पांडवों को, आप जानते हैं ना वहाँ पर भी कौरव लोग उन्होंने दुर्योधन वगैरह हम लोग पहले उनको जीत कर लेकर आएंगे करके, तो जब पहले गए वो द्रुपद ने उनको अच्छी तरह से मार के भगा दिया। फिर अर्जुन गया तो और द्रुपद को बंदी बनाकर लेकर आए, और उसके बाद द्रुपद और गुस्सा हो जाता है और उसने यज्ञ करके ऐसे उसी यज्ञ के कुंड से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों का जन्म हुआ, तो ऐसा पुत्र को प्राप्त करूंगा जो द्रोण को हत्या करेंगे करके। तो यहाँ पर दुर्योधन बहुत सारे चीज बता रहे हैं कि पहला है कि द्रुपद पुत्र है ना, द्रुपद का नाम ले रहे क्योंकि पुराना जो शत्रुत्व है उसको जागृत करने के लिए ना, और दूसरा है तव शिष्येन धीमता, आपने क्या किया वो आपको पता है कि आपको मारने वाला है, फिर भी वो जब आपके पास सीखने के लिए आया धनुर्विद्या आपने उनको सिखा दिया, आपके शिष्य है वो, तो ये आपका गलती है, अभी वही गलती मत कीजिए। प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि इसका भी और वो विस्तार करते हैं कि क्योंकि द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य कौन थे, अर्जुन थे, अर्जुन को उन्होंने प्रतिज्ञा किया था इस संसार में आप जैसा कोई जो धनुर्विद्या में प्रवीण कोई नहीं रहेगा, ऐसे मैं आपको बनाऊंगा ऐसे, तो पहले से उनको बहुत ही स्नेह और प्रेम था अर्जुन के प्रति, पहले एक बार आपने गलती किया है धृष्टद्युम्न को क्या करके ऐसे सिखा के ये सब सिखा के, फिर से अभी अर्जुन के प्रति स्नेह दिखाना नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा खतरा होगा ऐसे वो अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं द्रोणाचार्य को। तो ये सब दुर्योधन का राजनीति है, कैसे हम लोग यहाँ पर क्या सीखते हैं कैसे लोग शब्द को उपयोग करते हैं, ये राजनीति है, राजनीति जो एक्सपर्ट रहते हैं वो लोग क्या बोलते हैं शब्द को ऐसे उपयोग करते हैं कि तो लोगों को गुमराह करते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो शब्दों को उपयोग करके, तो हम लोग इसको और भी देखेंगे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं द्रोण ऐसा एक लिबरल ब्राह्मण क्या बोलते हैं दयालु, तो उदार जो ब्राह्मण, कितने उदार ब्राह्मण कैसे होते थे, कितने उदार होते हैं, उनको पता है कि ये व्यक्ति मुझे मारने वाला है, फिर भी जब आता है सीखने के लिए उनको सिखाते हैं। तो प्रभुपाद वो बोलते हैं कि वो लोग ऐसे सोचते हैं कि वैसे तो मरना निश्चित है, मृत्यु तो निश्चित है, उसके लिए हम लोगों का अपना धर्म, जो सिखाने का जो धर्म है, उसको क्यों हमें रोकना चाहिए? तो कितना जिम्मेदारी से वो धर्म को पालन करते हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है सिखाना है, तो वो देखते नहीं है कि वो भेदभाव नहीं करते, अगर ये शत्रु है या मित्र है, क्या आ जाके मेरा भलाई करेगा या मुझे मारेगा, ये उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। ऐसा हो सकता है शिष्य ही गुरु को मार सकते हैं, फिर भी गुरु शिष्य को सिखाना बंद नहीं करेंगे। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद उसके ऊपर, तो इसको लिबरल उदार भाव कहते हैं उसको। तो जब हम लोग ज्ञान को वितरण करते हैं तो बहुत ही उदार होना चाहिए। जब ज्ञान को स्वीकार करते हैं तो तब हमें उदार नहीं होना चाहिए, किसी से भी ज्ञान नहीं लेना चाहिए, तब हमें भेदभाव करना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही कोई ठगने वाले तथाकथित गुरु साधु या बाबा, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। किससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको बहुत जागरूकता से, उस ज्ञान के स्त्रोत्र को हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो और यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, जब दृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास आए सीखने के लिए, द्रोणाचार्य ने उनको सिखाया, लेकिन एकलव्य जब आए द्रोणाचार्य उनको नहीं सिखाया। ज्ञान देने में उदार होना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि अयोग्य शिष्य को ज्ञान देना चाहिए। तो एकलव्य अयोग्य शिष्य था। बहुत बार लोग एकलव्य को नाम उल्लेख करते हैं ना, गुरु भक्ति के लिए उनका नाम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं लोग। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका वर्णन करते हैं कि वो गुरु भक्ति है, तो जब गुरु ने उनको बताया कि आप सीखो नहीं, ये आपके लिए जरूरत नहीं है ये धनुर्विद्या, तो क्यों नहीं पालन किया उन्होंने? तो इसलिए उनके अंदर वास्तविक दृष्टिकोण से उनके अंदर गुरु भक्ति नहीं था। तो ये सही सिद्धांत से हमें सब कुछ समझना चाहिए। तो लोग जैसे समझते हैं वो सही नहीं हो सकता। तो जैसे आचार्य हमें समझाते हैं, सही दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए। तो सबको हमें ज्ञान देना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या है, योग्यता और अयोग्यता भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि उसको गलत फायदा उठा सकते हैं। विशेष करके क्षत्रियों में ऐसे एकलव्य जैसे को सिखा दिया तो क्या हो जाएगा, एकलव्य एक कौन थे वो वर्णाश्रम के नीचे थे, वो निषाद, वो एक निषाद थे, निषाद वर्णाश्रम से नीचे है, वो वर्णाश्रम धर्म में नहीं आते, वो क्षत्रिय धर्म। ऐसे कई वर्ग है मनुष्यों में जो वर्णाश्रम के नीचे है, वो बहुत ही नराधमा कहते हैं उनको, तो नरों में अधम होते हैं। तो वैसे लोग शक्तिशाली बन गए तो क्या हो जाता है, तो समाज ठीक तरह से नहीं चलेगा, वो प्रजा को शोषण कर सकते हैं, इसलिए उनको ज्ञान नहीं दिया जाता। ऐसे तो शूद्र को भी ज्ञान नहीं दिया जाता। तो ऐसे ब्राह्मण को उदार होना चाहिए, लेकिन फिर भी शिष्य की योग्यता देखना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत में कैसे है, सबको हमें ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देना चाहिए। तो इसलिए ना श्रील प्रभुपाद वो समदर्शी शब्द का वो वर्णन करते हैं। तो समदर्शी का अर्थ ये नहीं है, वो जब जुहू के बीच में प्रभुपाद ठहरने के लिए जाते थे सुबह के समय में, वो एक डॉक्टर पटेल उनके साथ आता था, बहुत उनके बीच में वार्तालाप होता था। प्रभुपाद कभी कभी बहुत कठोरता से ये अलग अलग तथाकथित साधुओं को खंडन करते थे। उस समय एक बार ये डॉक्टर पटेल, उसने बताया, स्वामी जी क्यों आप उनका निंदा करते हैं, वो भी साधु है, वो भी संत है, आप भी साधु है, लेकिन आपको क्या समदर्शी होना चाहिए, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। ऐसे तभी प्रभुपाद कहा, समदर्शी का अर्थ ये नहीं है कि हमें किसी से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो जब ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उसको भेदभाव करना चाहिए, और जब ज्ञान देते हैं तो तब समभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये दूसरे देश से आया है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ऐसे निम्न कुल का है, इसको नहीं देना चाहिए। देखो मैं सबको दे रहा हूँ ना, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कोई शूद्र हो, कौन हो, सबको मैं कृष्ण भावनामृत प्रदान कर रहा हूँ। ये मेरा समदर्शिता है, ऐसे प्रभुपाद समझाते हैं। तो इतिहास में ऐसे हो गया, भारत का इतिहास में वैदिक संस्कृति का पतन का एक कारण है कि ये ब्राह्मण वर्ग क्या किया, तो निम्न निम्न वर्गों को ये ज्ञान प्रदान नहीं किया, इसके कारण क्या हो गया, प्रचार कम हो गया, फिर वैदिक संस्कृति का पतन हो गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, तो सबको ये कृष्ण भावनामृत देना चाहिए। लेकिन फिर भी वही लोग लेंगे जो योग्य हैं, जिनके पास योग्यता है ना। योग्यता किसको, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, श्रद्धा चाहिए, श्रद्धावान जने हैं, श्रद्धावान जने हैं, और अनासक्ति होना चाहिए, और ज़्यादा भी अनासक्ति और आसक्ति होना नहीं चाहिए। ज़्यादा आसक्ति है तो भौतिक भोग में लिप्त हो जाएंगे, ज़्यादा अनासक्ति है तो हम लोग ज्ञानी बन जाएंगे। तो ऐसे जो योग्यता होता है वही लोग ले लेते हैं। सो चौथा श्लोक लेंगे, अत्र ओके पढ़िए। तात्पर्य तीसरे श्लोक के तात्पर्य, प्रभुपाद बोलते परम राजनीतिज्ञ, दुर्योधन कैसे था तो सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ था, वो कैसे शब्द को उपयोग कर रहे थे क्या, है ना।
परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों का इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है।
अत्र शूर
फर्स्ट लाइन में ग्रेट विप्रो में परम विप्रो महान महान परम विप्रो
या नोट इट डाउन हिंदी
एनी सुप्रीम विप्रो।
अत्र शूर महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युधान विराट तथा द्रुपद। तो यहाँ पर अत्र शूर महेश्वर स भीमार्जुन समायुधि, तो भीम और अर्जुन अर्जुन को वह तुलना कर रहे सभी महारथियों को, क्योंकि दुर्योधन को अर्जुन और भीम का शक्ति को शक्ति का जानकारी था, इसलिए उनसे वो तुलना कर रहे। और ये कौन कौन थे वो युधान, युधान मतलब प्रभुपाद 16वें अध्याय के इस अध्याय के वो 15वें और 16वें से 18वें श्लोक के शब्दार्थ में बोलते हैं, युयोधान और सात्यकी दोनों एक ही है, जो भगवान कृष्ण के जो सारथी थे ऐसे कहते हैं। तो युयोधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथः, विराट और द्रुपद ये सब महारथ है। तो महारथ शब्द का भी महाभारत में वर्णन आता है, जो योद्धा अकेले 11,000 अन्य योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकते हैं उनको महारथ कहते हैं। ग्यारह हजार योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध कर सकते हैं उनको महारथ कहते हैं। एक और भी है अर्धरथ, अतिरथ। अतिरथ मतलब जो असंख्य योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकते हैं। एनीवे, सो ऐसे ये सब महारथ है, युयोधान विराट द्रुपद। और प्रभुपाद कह रहे हो कि भीम और अर्जुन को जनरली जब भी तुलना किया जाता है तो ऐसे चीजों से हमें तुलना की जाती है जिनका हमें जानकारी होती है ना। जब भी हम लोग, बहुत बार ऐसे होता है ना शास्त्रों में या प्रभुपाद जी के ग्रंथों में कई सारे उदाहरण आते हैं, तो वो उदाहरण क्या है, वो ऐसे तुलना है जिनके हमें जानकारी है। तो जैसे भगवान कृष्ण के अंग के कांति या उनके रंग है, वो जो वो श्यामल, क्या बोलते हैं उसको, श्यामला रंग है ना, तो वो आध्यात्मिक रंग है, इस बौद्धिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी इस बौद्धिक जगत में उसके साथ ज्यादा से ज्यादा जो मिलता जुलता हुआ ऐसे उदाहरण हमें देकर समझाया जाता है कि कैसे भगवान का रंग है करके। तो जो चीज हम नहीं जान सकते हैं इन इंद्रियों के द्वारा या अनुभव के द्वारा, उनको जो चीज अनुभव में अनुभव या इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं उनसे तुलना करके समझाया जाता है। ये उदाहरण है, यहाँ पर भी ऐसे ये भीम और अर्जुन से तुलना किया था उन्होंने। तो पढ़िए तात्पर्य।
यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था।
तो जब धृष्टद्युम्न के बारे में द्रोणाचार्य को बताएगा, द्रोणाचार्य उसको ज्यादा ही वो गंभीरता से नहीं लिया, फिर दुर्योधन क्या बताया, अन्य योद्धाओं का नाम बताया जो महारथी है ऐसे। यहाँ पर
दुर्योधन जी ने विजय पथ में अत्यंत अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था, उससे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वो अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है।
फिर दृष्टकेतुश्चे कितानः काशीराजस्य वीर्यवान् कुरुदित्युञ्चि भोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः। इनके साथ ही दृष्ट केतु, चेकिताना, काशीराज, कुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा है। तो वो लोग वीरवान है, अत्यंत शक्तिशाली है। तो नरपुंग मतलब मानव समाज में वीर है, महान योद्धा है, इसलिए ऐसे कह रहे। अगला श्लोक, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी है। और भी महारथियों का नाम यहाँ पर वो ले रहे हैं, जो युधामन्युश्च विक्रांतो, विक्रांत मतलब वो पराक्रमी है युधामन्यु, और उत्तमौजश्च वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौज, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के जो पांच पुत्र है वो सब लोग सब महारथी है। तो आप इनका लिस्ट कीजिए, बाद में कितने सारे लोगों का नाम लिया गया है जो पांडव सेना महारथी, कितने महारथियों का नाम लिया गया अभी, तो अभी नहीं बाद में ऐसा लिख लीजिए उसको होमवर्क। हाँ, तो इससे आगे बढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए क्यों ये सभी लोगों का नाम लेने से क्या लेना होने वाला है हम लोगों को। हाँ, हमें तो हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना है ना, है कि नहीं। हाँ, ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकते हैं ना, प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं प्रवचन में कि क्योंकि ये सभी नाम क्या है, भगवान के जो मिशन है उसके संबंध में है। भगवान का क्या मिशन है, सभी ये लोगों को यहाँ पर इकट्ठा आके लेके आके सबको मार देना, वही उनका मिशन है। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्। इसलिए ये भगवान के मिशन के संबंध में है, इसलिए उनको नाम लेना भी हमें लाभ होता है, भगवान का स्मरण होता है, उनके मिशन के बारे में हम समझाते हैं। वो प्रभुपाद जो श्लोक उल्लेख करते हैं, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। सो क्योंकि ये भगवान के संबंधित है इसलिए तो वो भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर आप अगले श्लोक से अभी दुर्योधन सिर्फ पांडवों के ओर के जो महारथियों का नाम लेते गया तो क्या हो जाएगा, ये लोग निरुत्साही हो जाएंगे जो सुन रहे हैं ये सब चीज़, इसलिए वो अभी बदल देते हैं। अभी अपने सेना के बारे में वर्णन करता है। तो अगला श्लोक, अस्माकं तु विशिष्टाये दानि बोधय द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञा कुंथा ब्रवीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण तो द्विजोत्तम यहाँ पर कहा गया, सभी द्विजों में उत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं आप अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। विशिष्टाय, सो विशिष्टाय मतलब विशेष शक्तिशाली। तो आपकी जानकारी के लिए, नायका मम सैन्यस्य सम्यातम, तो आपकी जानकारी के लिए थान ब्रवी मीठे मैं बताता हूँ, ऐसे दुर्योधन कह रहे। तो आठवां श्लोक, भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिंजय अश्वत्थामाधिकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च। तो मेरी सेना में स्वयं आप है, भवान मतलब आप, मतलब द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहे थे। भीष्म देव, भीष्म है, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रव आदि योद्धा सदैव विजयी है। कृपश्च समितिंजय, समितिंजय मतलब सो हमेशा विजयी है, अश्वत्थामा सोमदत्त स्थितैव च। तो श्रील प्रभुपाद इनके बारे में वर्णन करते हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते हैं। अद्वितीय क्योंकि पिछले श्लोक में विशिष्टा शब्द आया था ना, मतलब विशिष्टा मतलब स्पेशल, विशेष, अद्वितीय। समितिम जया है मतलब हमेशा विजय रहे। तो विकर्ण कौन थे, वो दुर्योधन के भाई थे, उनके बारे में अभी थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और सौमदत्ति या भूरिश्रव महालिकाओं के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य की ब्याही थी। तो कृपाचार्य तो वो ब्रदर इन लॉ ऑफ द्रोणाचार्य। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वास्तव में ये जो योद्धाओं का नाम लिया गया है उधर भीष्म द्रोणाचार्य भीष्म कर्ण कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये सोम भूरिश्रव वगैरह तो सोमधत्तिश्च उनका नाम लिया गया और विकर्ण का भी नाम लिया गया। वास्तव में विकर्ण उनको तुलना करेंगे तो अन्नों को तुलना करेंगे तो उनका समान नहीं है। तो उनका नाम दुर्योधन इसलिए लेता है क्योंकि उसको डर था कि कहीं विकर्ण तो उस ओर न जाए। क्यों? जनरली सामान्यतः क्षत्रिय राजाओं में ऐसे होता था युद्ध करने से पहले वो ये अनाउंसमेंट ऑफ कुछ घोषणा करते थे। वो लोग कोई चाहे तो इस ओर से उस तरफ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं और उस ओर से इस तरफ कोई आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ऐसे घोषणा करते हैं वो। और विकर्ण का नाम इसलिए ले रहे क्योंकि विकर्ण का थोड़ा पांडवों के प्रति ज्यादा आकर्षण था। ऐसे होता है ना कभी कभी, इस आश्रम में कोई रहते हैं दूसरे आश्रम के तरफ थोड़ा ज्यादा आकर्षण रहता है ना। विकर्ण उसको व्यक्त कहाँ पर किया था? जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था वो विकर्ण एक ही व्यक्ति था जिसका विरोध किया था। इसलिए दुर्योधन को हमेशा डर था कि ये कहीं उस तरफ न जाए करके, इसलिए उसका नाम लेता है। ये डिप्लोमेसी दुर्योधन का ये क्या है, राजनीति है। वैसे हुआ भी लेकिन विकर्ण नहीं गया, दूसरा गया। जब युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे घोषणा किया कि फोक्स कोई आना चाहता है इस तरफ आ सकते हैं, ऐसे जब उन्होंने घोषणा किया तो वो धृतराष्ट्र के एक पुत्र था जो गांधारी के गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ था। वो गांधारी के एक मतलब धृतराष्ट्र के एक वैश्य मेड सर्वेंट थी, सेविका थी, उसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ था। उसका नाम भूल गया मैं तो, उन्होंने वो ये सेना को छोड़कर उस तरफ गए। तो इसलिए डर के दुर्योधन क्या कर रहा है, उनका नाम ले रहा है। तो टेक्स्ट 9 अन्ये च बहवः शूरा नगर्ते धत्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहाराः सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। तो यही नहीं दुर्योधन कह रहा, यही नहीं और भी कई है, बहुत सारे है, बहावा मतलब बहुत सारे है। और वो कैसे है, नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः, कई सारे शस्त्रों के साथ वो सुसज्जित है, तैयार है युद्ध करने के लिए। और हमेशा युद्ध में वो क्या है, बहुत ही प्रवीण है, निपुण है, युद्ध विद्या में निपुण है, ऐसे ही युद्ध विशारद। लेकिन यहाँ पर एक उससे पहले अन्य जब शुद्ध मदरते त्यक्त जीविता, मेरे लिए उनके जीवन को त्याग करने के लिए तैयार है। तो ये कैसे बता रहे हैं, बहुत ही गर्व से बोल रहे हैं कि इतने सारे लोगों ने मेरे लिए जीवन भी त्याग करने के लिए तैयार है, उनकी समर्पण भावना को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे आचार्य बता रहे हैं कि दुर्योधन को ये सरस्वती देवी ने उसके जीवा के ऊपर बैठ के ये बोलने के लिए इसलिए कहा गया, कहा उन्होंने वादे किया कि मदरते त्यक्त जीवित शब्द का अर्थ क्या है, ये सब लोग मेरे लिए मर के जाने वाले हैं, इसका ऐसा अर्थ है, हाँ ऐसे वो कहते हैं। तो ये भी एक लक्षण है कि कैसे ये सब लोग मर के जाने वाले हैं। तो हालांकि बहुत सारे लोग हैं, पांडवों के लिए ये जीत का एक लक्षण है, पांडव के विजय का लक्षण है कि ये सब लोग मरने वाले हैं। दुर्योधन के पास जो भी है तो वो मदरते शब्द जीवित है का अर्थ है। तो ना हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हालांकि आपका बहुत बड़ा सेना है, बहवा यहाँ पर शब्द आता है ना, अन्य बहवा बहुत बड़ा सेना है और बहुत सारा सुसज्जित भी है, बहुत निपुण भी है, लेकिन वो मर के जाने वाला है, क्या करना है उससे युद्ध करके, है ना। तो इसको असत सैन्य कहते हैं। तो देहापत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्येषु असत्सु अपि पश्यन् अपि अपश्यताम आत्म तत्व पश्यन् अपि न पश्यन् अपि न पश्यति। एनीवे तो शुद्ध गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं दूसरे स्कंद के आरंभ में, जब वो प्रवचन करना शुरू कर दिए, वो कहते हैं देहापत्य कलत्रादिषु, हम लोग ये देह का और हमारे सगे संबंधियों का, कलत्र मीन्स पत्नी का, अपने बच्चों का या ऐसे अन्य राजनीतिज्ञों का, ऐसे कई लोगों का हम लोग आश्रय लेते हैं, लेकिन ये सब लोग हमें मृत्यु से नहीं बचाने वाले। तो ये सब आत्म सैन्येषु असत्सु अपि, ये ऐसा सैन्य असत सैन्य है ये, क्योंकि वही लोग मर के जाने वाले हैं, वो क्या आपको मृत्यु से बचाएंगे, ऐसे ये परीक्षित महाराज को वो कह रहे थे। तो क्या होने वाला है ऐसे असत सैन्य का, आप युद्ध कर रहे हैं, आपको पता है कि आपकी सेवा सब मर के जाने वाला है, तो युद्ध करके क्या फायदा है, आप हारने वाले हैं। तो जीवात्मा इस जगत में ये भौतिक गुणों के साथ संघर्ष कर रहा है, प्रकृतिष्ठानि कर्षति मन षष्ठन इंद्रियानि प्रकृतिष्ठानि कर्षति, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये इस प्रकृति के नियम है, इन प्रकृति के नियम, ये भौतिक शरीर को स्वीकार करने के कारण इन प्रकृति के नियमों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, वो डार्विन भी उसने बताया कि, लेकिन यहाँ पर कोई सर्वाइव नहीं होने वाला है ना। वैज्ञानिक लोग भी बोलते थे हम लोग वी विल कॉन्कर द नेचर, ऐसा घोषणा कर देते हैं, हम प्रकृति को ऊपर जीत हासिल करेंगे धीरे 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 धीरे। तो वो भी संघर्ष कर रहे हैं प्रकृति के साथ, लेकिन हमेशा संघर्ष के में क्या होगा, प्रकृति जीत लेगा, है ना। तो क्योंकि हम लोग ऐसे असत सैन्य को लेकर लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में हम लड़ना चाहते हैं तो जैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को उन्होंने शिक्षा दिया कि आपको भगवान कृष्ण को आश्रय ग्रहण करना चाहते, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य शिक्षतो भयाम, आप मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको सर्वात्मा जो सभी के आत्मा है, ईश्वर है, नियंत्रक है, सर्वोच्च भगवान है, हरि है, उनके शरण में जाना चाहिए, आश्रय ग्रहण, उनके बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए, वो आपको मृत्यु के भय से मुक्त कर देगा। तो यहाँ पर ये दुर्योधन का ये मूर्खता है कि वो ऐसे असत सैन्य को का आश्रय ग्रहण किया है जो मर के जाने वाले। प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि ऐसे दुष्ट दुर्योधन का उन्होंने संग किया, वो लोग भी सब मर के जाने वाले हैं। सो उनका वो दुर्भाग्य था, लेकिन फिर भी दुर्योधन वो क्या सोच रहा है, इनके सहायता से मैं इस युद्ध में जीत हासिल करूंगा। ये दुर्योधन का मूर्खता है। आप पढ़िए तात्पर्य को।
जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृत ब्रह्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे।
तो शिल प्रभुपाद तीन ऐसे उदाहरण दिए, लेकिन बहुत सारे बहुत ऐसे बताते हैं ना, बहुत सारे।
दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वो अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था।
निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय की प्राप्ति का आश्वस्त था। उसको बहुत कॉन्फिडेंस था। वो ये उसका मूर्खता है, क्योंकि उसने ऐसे असत सैन्य का आश्रय ग्रहण किया। तो दसवां श्लोक, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमिते शेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारे शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा बलिभांति संरक्षित है, जबकि पांडवों के शक्ति भीम द्वारा बलिभांति सुरक्षित संरक्षित होकर भी सीमित है। एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो अपर्याप्तम मतलब अपरिमेय, इमेजरेबल, अपरिमेय है। इसको हम लोग माप नहीं कर सकते, उतना है हमारे शक्ति। एक दृष्टिकोण से वो सही था। परीक्षित महाराज दशम स्कंद में वो कहते हैं कि ये कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि एक समुन्दर के समान था। वो तो असंख्य सेनानी थे वहां पर, और इस समुन्द्र में होता है ना बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे थिमिंगिल, ऐसे बड़े बड़े जो एक्वाटिक्स होता है ना, बहुत ही भयानक भयंकर सो जलचर पशु होते हैं। वो लोगों को क्या है, निगल लेते हैं। कभी थिमिंगिल वगैरह क्या है, ऐसे 200 हाथी के समान रहता है उसका वजन। तो ऐसे भीष्म द्रोण जैसे बहुत बड़े बड़े थिमिंगिल थे, उनको पार करके जाना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा के कारण, तो मेरे जो पितामह थे, वो क्या पितामह है ना, तो ग्रैंड फादर्स है ना, वो जन्मे, वो अभिमन्यु के पुत्र थे, परीक्षित महाराज अर्जुन के पुत्र के पुत्र। तो उन्होंने क्या कर दिया, आसानी से पार कर लिया। तो इसलिए अपरिमेय था उनकी सेना, भीष्म के द्वारा रक्षित होकर। यहाँ पर भी हम लोग दुर्योधन का ये राजनीति भाव हम प्रकट होता है, क्योंकि द्रोणाचार्य को वो गुणगान किया उन्होंने, लेकिन भीष्मदेव को गुणगान नहीं किया। वो भी सुन रहे थे, भीष्मदेव भी जो चर्चा हो रहा था। इसका अर्थ है कि जब लोग आगे भी वर्णन होगा वो, तो बहुत सारे लोग सुन रहे थे, भीष्मदेव भी सुन रहे थे क्या चर्चा हो रहा है द्रोण और दुर्योधन के बीच में। तो फिर सिर्फ द्रोणाचार्य के साथ बात करते और भीष्म के साथ बात नहीं करेंगे तो भीष्मदेव निरुत्साही होंगे, इसलिए उनको भड़काने के लिए वो उनका नाम लेता है। तो हमारा शक्ति अपरिमित है भीष्म के द्वारा रक्षित होकर, ऐसे वो कहते हैं। और पांडवों की शक्ति भीम द्वारा बलि भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर फिर कैसे भीम के प्रति उसका क्या है, द्वेष के प्रकट होता है, क्योंकि हमेशा वो भीम को द्वेष करना चाहते थे, किसी न किसी तरह भीम को मारना चाहते थे। और विशेष करके भीम ने भी ये प्रतिज्ञा ली थी ना कि मैं पूरा सारा जो जो कौरव जो थे, सब पुत्र थे धृतराष्ट्र के, उनको मैं मार दूंगा, ऐसे उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। उसके कारण हमेशा वो डर और उसके प्रति द्वेष भी था। तो इसीलिए उसको, और विशेष करके ये लोग बहुत सारे जो ईर्ष्यालु या द्वेषी लोग होते हैं वो दूसरों का हमेशा नीचे दिखाना चाहते हैं, इसलिए भीम को यहाँ पर नीचे दिखा रहा है दुर्योधन। खड़े तात्पर्य
यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वो सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरे और पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है।
तो हम तुलना कर रहे थे एक समुन्दर से, समुन्दर को क्या हम लोग माफ कर सकते हैं? नहीं ना। क्या उसको पार करना आसान है ठहर के? होगा नहीं, है कि नहीं? इसलिए अपरिमेय सेना था।
जो भीष्म की तुलना में नगण्य है, दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भी भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही
और जब भी अर्जुन किसी को मारने वाले थे, क्योंकि भीम ने ऐसे प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उसको भीम को मारने के लिए छोड़ देते थे। पांडव लोग ऐसे ही करते थे, विशेष करके वो जो सौ पुत्र थे, सबको दुर्योधन ने मार लिया, भीम ने मार दिया। तो अन्य दो भी उन्होंने लिया था कि सबका मैं खून पीऊंगा, उनको मारूंगा, हत्या करूंगा और उनका खून पीऊंगा, और क्या है वो द्रौपदी को बालों में भी खून लगाएंगे, हाँ, दुशासन का विशेष करके, और उसके क्या है कोपरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, लेकर आकर उसके ऊपर आप स्नान करोगे ऐसे। तो ये भीम
साथ ही से दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वो युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था।
तो पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि अंत में निस्संदेह अपने मित्रों के संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय की प्राप्ति के लिए आश्वस्त था, उसको कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि ये लोगों के सहायता से मैं युद्ध में जीतूंगा। यहाँ पर भी वो उसकी विश्वास को प्रकट करा रहा है, किंतु साथ से दृढ़ विश्वास था कि भीष्म के उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट होना थी, वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। यहाँ पर विशेष करके भीष्म के कारण मुझे युद्ध में विजय होगा ऐसे दुर्योधन सोच रहा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ये मूर्खता है जो ना दुर्योधन का, और वो मूर्खता और भी यहाँ पर व्यक्त कर रहा है अपने आप को। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे के श्लोक में। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अभी उसने भीष्म को इतना गुणगान कर दिया, इसलिए अन्य लोग अतएव सैन्य युग में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह के पूरी पूरी सहायता दे। आप सभी मतलब क्या है, वो सिर्फ द्रोणाचार्य वो सुन नहीं रहे थे जो दुर्योधन बात कर रहा था, वो भीष्म भी सुन रहे थे, जैसे हम लोगों ने पिछले श्लोक के श्लोक में चर्चा किया, अन्य कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे वो सुनने के लिए, चर्चा सुनने के लिए। तो उनको भी उत्साहित करने के लिए, उनको भी थोड़ा गुणगान करके तो क्या करने के लिए, इट्स नॉट फ्लैटर गुणगान फ्लैटरिंग, तो चापोसी करके क्या करने वाला था, उनको भी भड़काने वाला था, इसलिए वो कहते हैं अतएव सही नियुम तो आप लोग भी अलग अलग स्थित में होकर भीष्म देव को रक्षा कीजिए। भीष्म मेवा भी रक्षन तो भवंत सर्वये वही ऐसे कहते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि अभी हालांकि भीष्म देव बहुत ही बड़ा योद्धा है लेकिन फिर भी अभी वो बहुत बुरे हो गए हैं, इसलिए आप सब लोग उनका रक्षा कीजिए। एक तरफ वो युद्ध करते हैं अपने ध्यान एक ही तरफ युद्ध में वो केंद्रित करेंगे तो दूसरी ओर कोई उनको देखते नहीं है तो क्या होगा, दूसरी ओर से कोई उनको आक्रमण कर सकता है, इसलिए आप सब लोग दो सभी ओर से उनका रक्षा कीजिए। ऐसे दुर्योधन उनको कह रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर भी उसका जो राजनीति भाव है वो व्यक्त होता है।
भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कई अन्य योद्धा यह न समझते कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है, अतः दुर्योधन ने
क्योंकि हमेशा ये जो लोग रजोगुण में रहते हैं उसके लिए ना वो उनका पदवी नाम यश के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति रहता है उनको क्षत्रियों को, इसलिए उनको हमेशा गुणगान करना पड़ता है, फ्लैटरिंग करना पड़ता है, इसलिए वो ऐसे सोचेंगे करके दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से इससे स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। और
अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि विश्वदेव निसंदेह महान तप योद्धा है किंतु आप वो वृद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले, अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यू न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय विश्वदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में विश्वदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। ये जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वो इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने युद्ध पीड़ा के अवसर के ऊपर किया था।
तो ये विश्वास से दुर्योधन आगे बढ़ रहा था, उसको विश्वास था कि हम लोग विजयी होंगे, ये लोग बहुत ही पूरा शक्ति लगाकर इस युद्ध में लड़ेंगे। पहले उन्होंने जब दूत क्रीड़ा में द्रौपदी का वत्स हरण हुआ था होने के मतलब करने के लिए कोशिश किया गया था तो उस समय वो लोग उसका विरोध नहीं किया, इसीलिए अभी भी ये लोग मेरा सहायता करेंगे ऐसे विश्वास से वो आगे बढ़ रहा था। मतलब ये तीनों तात्पर्य में 9वें 10वें और 11वें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद दुर्योधन के विश्वास के बारे में भी कह रहे कैसे उस युद्ध में लड़ेंगे, लेकिन हम लोग बार बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कैसे पांडवों के प्रति ज़्यादा लक्षण है विजय के लिए, इसलिए ये दुर्योधन का मूर्खता है। और एक और चीज, इस श्लोक तक दूसरे श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक दुर्योधन के हम लोग कूटनीति का जो स्वभाव है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो भक्तों के बीच में ऐसे कूटनीति नहीं होना चाहिए, डिप्लोमेसी, लेकिन भौतिक जगत में कभी कभी ऐसा होता है कि ये किए बिना नहीं रह सकते यहाँ पर सीधा जीवन नहीं बना सकते लेकिन फिर भी भक्तों के बीच में यह नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कूटनीति है तो आरंभ में वो आप यशस्वी हो सकते हो, लेकिन बाद में भक्तों का जो जो ट्रस्ट है, प्रेम और जो ट्रस्ट, लव एंड ट्रस्ट बोलते हैं ना, विश्वास है, आप गवा देंगे या खो जाएंगे, खो जाएगा आपके लिए वो। तो इसलिए हमें जितना सीधा हो सके उतना सीधा रहना चाहिए भक्तों के साथ, विशेष करके। तो उसका भक्ति में भी उपयोग है, जैसे सनातन गोस्वामी जब नवाब हुसैन शाह उनको जेल में बंदी बना दिया तो उन्होंने क्या बताया वो जेलर को जो मुसलमान था, मैं अभी मुसलमान दरावेश बनने जा रहा हूँ, मक्का जाने वाला हूँ, मुझे छोड़ दो। और उसको पैसा, उन्होंने पैसा भी दे दिया, धन भी दे दिया उन्होंने, ऐसे देकर वहाँ से निकल के चले गए सनातन गोस्वामी। तो ऐसे कूटनीति का उपयोग है, होता है भक्ति में, लेकिन हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए, ऐसे उसका हमारा स्वभाव नहीं बन जाना चाहिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीधा रहना चाहिए, ठीक है। सो श्लोक क्रमांक 12, तस्य संजनयन हर्षम गुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनोचस्य तं तत्मो प्रतापवान तथा कुरु वंश के वयो वृद्ध परम प्रतापि एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जन की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाए, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। यहाँ पर सो भीष्म पितामह उनके बारे में यहाँ पर वर्णन हो रहा है। कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोजस्य शंखम दद्मो प्रतापवान। तो परम प्रतापी, बलशाली, प्रतापवान मतलब बहुत ही बलशाली थे। तो जो कुरु वृद्ध कहा गया है पितामह को या भीष्मदेव को, तस्य संजय नन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदस्य शंखम दद्मो प्रतापवान। कुरुओं में वृद्ध और जो उनके पितामह थे और बहुत ही प्रतापवान थे, ऐसे तीन शब्दों से भीष्मदेव का वर्णन किया गया। तो और यहाँ पर प्रभुपाद वो वर्णन करते हैं अपने लेक्चर में, कुरु वृद्ध, हालांकि वो वृद्ध है फिर भी जब युद्ध का समय आ गया तो वो युद्ध करने में आगे है। ऐसा नहीं कि आधुनिक समाज के जो राजनीतिज्ञ है कि उनका आधा सेना क्या है उनके रक्षा में, वो सेफ चैम्बर में बैठे रहेगा और उनकी रक्षा करने के लिए आधा सेना चला जाता है। लेकिन यहाँ पे योद्धा लोग पहले सामने रहते थे, सेना के सामने। हालांकि यहाँ पर पितामह को कैसे है, कुरु वृद्ध है, सभी कुरुओं में वृद्ध है, फिर भी अब जब युद्ध का समय आ गया तो वो सामने आ गया। ये एक क्षत्रिय भावना होता है, उनको जब भी युद्ध करने का अवसर मिल जाता है तो वो सामने चले जाते हैं, क्योंकि वो युद्ध से प्रेम करते हैं, उनको ऐसे प्रशिक्षण दिया जाता है आरंभ से। क्षत्रियों के लिए जो शिकार करना वो अनुमति है धर्म में, धर्मशास्त्र में, क्योंकि उनको शिकार किए बिना वो कैसे ये युद्ध कला में निपुण होंगे वो लोग। लेकिन शिकार मतलब वो चिकन और गोट को शिकार नहीं करते वो लोग, है ना, मुर्गी और क्या है बकरी, मुर्गी और बकरी के साथ युद्ध नहीं करते वो लोग। आजकल के पॉलिटिशियन यही खाते हैं, मुर्गी और बकरी खाते हैं, मार के खाते हैं। लेकिन वो शेर, चीता और ऐसे बहुत ही क्रूर पशु है जंगल में, उनके साथ युद्ध करते हैं। अभी भी जब प्रभुपाद सानंद गए थे या जयपुर गए थे, जयपुर के राजा से मिले वो, उन्होंने अपने म्यूजियम में दिखाया प्रभुपाद जी को, ये मैंने ये चीता ये जो जो शेर है उसको मारा है था, उस शेर को मारा था, ऐसे उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन उसका जो त्वचा है उसको प्रदर्शित किया था। तो अभी हाल ही में भी ऐसे क्षत्रिय थे, तो वो लोग ऐसे प्रशिक्षण मिलता है उनको, फिर वो ऐसे बड़े हो जाते हैं तो वो बहुत ही उनके अंदर भय नहीं रहता युद्ध करने के लिए, उनको आनंद आता है। और ये भी उनको जानते हैं कि युद्ध क्या है, वो जीवन भर युद्ध ऐसे कला को अभ्यास करते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए एक उनका अवसर है ये युद्ध। कभी भी युद्ध आते हैं तो संसार में कभी युद्ध होते हैं तो उसको अपना कला को प्रदर्शन करने के लिए वो अवसर मानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि तो यो युद्ध में मर गया तो हम जीत गए तो हमें राज भोग का सुख तो मिलता ही है, हम लोग युद्ध में मर गए तो भी हम लोग अंत में तो स्वर्ग में चले जाएंगे, वो ये सब जानते हैं, उसमें विश्वास रहता है, इसलिए वो युद्ध करने में सामने जाते हैं। तो ये प्रभुपाद बोलते हैं कुरु वृद्ध पितामह, हालांकि वृद्ध है फिर भी सामने है युद्ध करने के लिए। सिंहनादम विनोदस्य शंखम दद्मु प्रतापवान, तो उन्होंने सिंह के जैसे वो आवाज करने वाला जो शंख है उन्होंने बजाया। तो शंखनाद का क्या चिन्ह होता है, लक्षण होता है, अभी युद्ध आरंभ होने वाला है ऐसे उसका लक्षण है। और विशेष करके आजकल के युद्ध में शंखनाद का नहीं होता है ना, इसको रात में ही सबको जाके बम डाल देते हैं, लोग सोते हुए मासूम लोगों के ऊपर बम डाल देते हैं। लेकिन ऐसे ही है धर्म युद्ध, क्षत्रियों में ऐसे नहीं होता था, धर्म युद्ध में ऐसे धर्म जो क्षत्रिय धर्म को पालन करते ऐसे नहीं करते थे, वो ऐसे शंखनाद करके उनको ललकारते थे। तो और शंखनाद क्या है कि सभी धार्मिक विधि विधानों का, जैसे हम लोग भगवान का आराधना करते हैं अन्य कई धार्मिक विधि विधानों में उसको बजाया जाता है, क्योंकि वो एक मंगलमय वातावरण को लेकर आता है, या दूसरे शब्दों में वो चिन्ह है धार्मिक विधि विधानों का आरंभ करने का चिन्ह है। क्योंकि यहाँ पर क्षत्रियों में धर्म युद्ध का आरंभ हो रहा है, वो भी एक धार्मिक कार्य है युद्ध करना भी, तो इसलिए वो लोग शंख बजाते हैं। तो जैसे हम लोग जब पूजा करते हैं भगवान को उसमें एक पैराफर्नेलिया क्या होता है, शंख होता है, वैसे ही जो क्षत्रियों में भी वो एक वो उनका एक सामग्री है या सामान है, तो वो हमेशा रहता है क्योंकि वो ऐसे युद्ध करते हैं धर्म युद्ध, तो उसके पहले वो बजाते हैं। अंत में ये जो शंख है भगवान विष्णु को प्रतिनिधित्व करता, क्योंकि वही हम लोगों ने चर्चा किया ना, धर्म मतलब क्या है, भगवान विष्णु वो धर्म के पिता है, सभी जो धार्मिक कार्य या धार्मिक चीज जो है वो भगवान विष्णु को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर भीष्म देव उनको कुछ उत्तर दिए बिना, कुछ बात किए बिना वो क्या कर दिए, जब दुर्योधन ऐसे बोल रहा था वो शंखनाद करके शंख बजा के उन्होंने शंख की आवाज से उनको उत्तर दिया। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि स्वाभाविक स्नेह के कारण ये दुर्योधन इतना डर गया है, भयभीत हो गया है, इतना चिंतित है, उसको थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि वो पिताजी पितामह है, थोड़ा ये पारिवारिक स्नेह होना तो स्वाभाविक है, ऐसे उनको क्या किया उन्होंने, प्रोत्साहित किया उन्होंने। लेकिन ये शंखनाद क्योंकि ये शंख का जो आवाज है भगवान विष्णु को संबोधित करता है, इसलिए वो कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली कि क्योंकि भगवान विष्णु उस तरफ है आपके लिए विजय का कोई अवसर नहीं है, तो वो लोग विजयी होंगे, ऐसे वो ऐसे शंख नाद करके शंख बजा के बता रहे हैं उनको अर्जुन दुर्योधन को, तो आपके लिए विजय नहीं आएगा, उनके पास जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु उस तरफ है, वो धर्म के पिताजी हैं, पितामह, ऐसे कह रहे। अभी भीष्मदेव तो महाजन थे और भगवान के महान भक्त थे वो, फिर क्यों उनके वो पांडव के साथ युद्ध करने के बजाय वो कौरवों के ओर से युद्ध कर रहे हैं, क्या क्या कारण है इसके लिए बताइए, किसी को पता है? वचन क्या दिया था उन्होंने? तो जो भी इस हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठेंगे मैं उनका सहायता करूंगा, ऐसे उन्होंने अपने पिता जो कौन है शांतनु से नहीं तो उनके शांतनु के जो पत्नी तो या सत्यवती के जो पिताजी थे उनसे उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन जब उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी उनको पता नहीं था कि ऐसे दुष्ट दुर्योधन आगे आने वाला है, है ना, तो क्योंकि वो प्रतिज्ञा किया था उन्होंने वो बाध्य हो गए, तो वो कारण था। और प्रभुपाद बार बार यहाँ पर भी बोलते हैं कि वो लोग भीष्मदेव क्या है भीष्मद्रोण, वो उन्होंने ऐसे भी सोचा कि क्योंकि दुर्योधन का हम लोगों ने क्या किया है अन्न नमक खाया तो, लेकिन प्रभुपाद बाद में खंडन करेंगे उसको दूसरे अध्याय में, सिर्फ उसके आधार पर ही वो लोग उनका साथ नहीं देना चाहिए था, दुर्योधन का साथ नहीं देना चाहिए था ऐसे कहते हैं, लेकिन फिर भी उसके कारण वो लोग साथ दिया उन्होंने, वो भी एक कारण है तो दूसरा, लेकिन अंदरूनी कारण क्या है, भीष्मदेव क्यों उनकी ओर लड़ रहे थे या भगवान को वीर रस का आस्वादन कराने के लिए, भगवान कृष्ण के साथ उनका क्या संबंध है, वो दास्य भाव में है तो दास्य भाव में वो उनका सेवा करते हैं, भीष्मदेव भगवान के दास है वो, तो इसलिए वीर रस को वो आस्वादन कराना चाहते थे, ऐसे होता है ना युद्ध में भगवान बहुत क्रोधित हो जाते हैं, फिर अपने वो जो एक पड़ा हुआ जो रथ का जो पहिया है उसको लेके आके भीष्मदेव के ऊपर फेंकने के लिए आ जाते हैं। अंत में जब भीष्मदेव अपना शरीर त्याग रहे थे उस समय उसी रूप को वो स्मरण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये रूप हमेशा मेरे नेत्रों के सामने बने रहे, ऐसे वो प्रार्थना करते हैं। तो वो अंदरूनी कारण है या प्रमुख कारण है क्यों उनके ओर से। और एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो भीष्मदेव अर्जुन से इस युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन से भी अच्छे स्थिति में है, क्यों वो भगवान के सामने है, वो भगवान का सीधा दर्शन करते हैं, अर्जुन तो भगवान के पीछे है इसीलिए भगवान का वो दर्शन नहीं कर पाते थे, तो एक दृष्टिकोण से वो अच्छे स्थिति में है भीष्मदेव। तो ये सभी का पढ़िए उसको तात्पर्य वो
प्रसन्न करने के लिए अतिरिक्त उच्च स्वर में अपना संगीत बजाया जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में सिंह के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आस नहीं है क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है।
और ये भी एक लक्षण है कि पांडवों के विजय के लिए कई सारे हुए ना अभी,
फिर भी युद्ध का मार्ग दर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वो कोई कसर नहीं रखेंगे।
तथा शङ्काश्च देव्यश्च अनवानकगोमुखाः स सैवाभ्यमन्यन्त स शब्दस्थूलो भवः। तत्पश्चात् शङ्क नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो क्षत्रियों के पास सिर्फ शंख भी नहीं रहता, ये अन्य जो वाद्य भी रहते हैं जिनमें शंख नगाड़ या बिगुल तुरही सिंह साहस सभी रहते हैं। यहाँ पर सहसा शब्द का क्या है, अपने आप, इसका अर्थ है कि वो किसी ने बजाया नहीं उनको, वो अपने आप बजने लगे वो क्योंकि वो युद्ध करने के लिए इतना तैयार थे वो उनके अंदर भी क्षत्रियों का भाव था वो युद्ध करने के लिए कितना तीव्रता था कि वो अपने आप बजने लगे, सहसा है ना, एक साथ बज उठे ऐसे बोलते। समवेत वो सब मिला के कोलाहल पूर्ण था जो शब्द। तो फिर अगले श्लोक, ततः शङ्क ततः श्वेतैरहर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडव शैव दिव्यौ शङ्को प्रदद्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ पर कई और लक्षण भी वर्णन किए जा रहे हैं जो पांडवों के विजय के चिन्ह हैं। पहला चीज है कि तथा स्वेतर है युक्ते महती चंदन स्थित हो, महती चंदन स्थित हो ऐसे रथ में वो उपस्थित है। दोनों कौन, माधव पांडव, माधव और पांडव कृष्ण और अर्जुन ऐसे रथ में स्थित है। वो बहुत ही महान था, महती शब्द का तो विशाल था या महान था। तो उसको अर्जुन को अग्निदेव ने भेंट दिया था, जब अग्निदेव खांडवन को खाना चाहते थे तो अर्जुन और कृष्ण ने उनको सहायता की थी ना, तो उसको प्रसन्नता के लिए उन्होंने ये रथ को दिया था। और इस रथ का महत्व क्या था, कोई भी दिशा में वो जाता है वो हमेशा विजयी बन के आता है, तो वो महत्व था इसका। तो इसलिए महती संदने, यहाँ पर संजय वो शब्द को क्यों उपयोग कर रहे, आगे जाके प्रभुपाद तात्पर्य में बताने वाले हैं ना कि बहुत ही चतुराई से दुर्योधन धृतराष्ट्र को समझा रहे कि आपके पुत्रों को विजय नहीं प्राप्त होगा क्योंकि यहाँ पर महती संदने स्थित हो, ऐसे महान रथ में वो दोनों बैठे। कौन बैठे, माधव, और माधव शब्द का भी महत्व होता है। तो माधव शब्द का क्या अर्थ है, माधव शब्द का अर्थ है जो लक्ष्मी देवी के पति है उनको माधव कहते हैं, जो सौभाग्य के देवी है उनको माधव कहते हैं, उनके पति को माधव कहते हैं। तो ये अर्थ हुआ, लेकिन उसका महत्व क्या है, उसका महत्व है कि इसीलिए पांडवों को लक्ष्मी देवी कौन है, वो ऐश्वर्य सुंदरता और विजय का लक्षण है। इसके कारण जो पांडवों को इस युद्ध में विजय प्राप्त होगा क्योंकि माधव जो लक्ष्मी पति है, जो विजय के सौभाग्य के लक्ष्मी देवी है, उनके पति उनके साथ है, ऐसे चतुराई से संजय धृतराष्ट्र को बता रहे। वो दूसरा लक्षण है विजय का लक्षण। तो और तीसरा है दिव्य शंखो प्रदत्मत हो, वो दिव्य शंख को उन्होंने बजाया उन्होंने। तो जो कौरवों के जो शंख है वो दिव्य नहीं बताए गए, तथा शंका शबेर शपनवान का गोमुखा, ऐसे कुछ ऐसे ही बोल दिया गया सीधा। लेकिन यहाँ पर दिव्य शंको प्रदत्त मत हो, वो शब्द दिव्य उपयोग करके संजय बता रहे कि इनके पास दिव्य शंख भी है। तो ये विशेष गुणों को लक्षणों को वर्णन कर रहे हैं जिसके कारण वो विजयी होंगे। तो भगवान कृष्ण का शंख तो दिव्य है, वो भगवान के शाश्वत क्या है पैराकर्णल लिया है उनका, क्योंकि अर्जुन भी भगवान के शाश्वत पार्षद है, उनका शंख भी दिव्य है। तो हालांकि उसका हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, हालांकि जगत में जब आते हैं तो उनको कोई ना कोई वो दे देते हैं, तो उसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये तीन विजय के लक्षण थे यहाँ पर बताएगा। और प्रभुपाद यहाँ पर एक श्लोक को उल्लेख करते हैं, जयस्तु पांडवपुत्राणां येषां पक्षे जनार्दनः। तो पांडव पुत्र का विजय होगा क्योंकि इनके पास जनार्दन है, ऐसे कहते हैं। पढ़िए तात्पर्य को।
एक द्वारा बजाए गए शंख की तुलना कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाम से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष के विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडव पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। जय तथा जय सदा पांडु के पुत्र जैसे की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वो अपने पति के बिना नहीं रह सकते। अतः जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वो अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोगों में जहाँ कहीं भी वो जाएगा वहाँ विजय निश्चित।
श्लोक क्रमांक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांडवं तन्मो महाशंखं भीमकर्मा मृगोदरः। भगवान कृष्ण ने अपने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति बोधी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो यहाँ पर उन शंखों का भी नाम बताया गया है। पिछले श्लोक में दिव्य शंखो प्रदत्त मत हो ऐसे कहा गया, वो माधव और पांडव दिव्य शंख को बजाए, इस श्लोक में उनके नाम भी बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण का शंख का नाम था पांचजन्य, अर्जुन का शंख का नाम था देवदत्त, और भीम कर्म वृकोदर पौंड्रम दद्मो महाशंखम, जो भीम का शंख का नाम था पौंड्र, और कैसे शंख था वो महाशंखम। तो कृष्ण और अर्जुन के जो शंख थे वो दिव्य थे, और भीम का जो शंख था वो महाशंख था। तो महान शंख को भीषण शंख को बजाया उन्होंने। तो और यहाँ पर अलग अलग नामों का भी महत्व देते थे। तो इन शंखों को हम लोग देखते हैं कि भगवान के नित्य वस्तु है ये शंख पांचजन्य, लेकिन जब भगवान इस जगत में धरातल पर लीला करने के लिए प्रकट हो जाते हैं तो वो शंख को प्राप्त करने का भी लीला करते हैं। आप जानते हैं ना इसका इतिहास, जब उनके गुरु ने बताया कि मेरे पुत्र को लेकर आ जाओ, मेरे पुत्र ने क्या समुंदर में मेरे पुत्र को लेकर गया जब वो बचपन में, तो आप मुझे वही दक्षिणा दे सकते हैं, ऐसे जब उनके गुरु सांदीपनी मुनि ने बताया, तो क्योंकि उनको पता था कि भगवान कृष्ण क्या है, भगवान है, देवोत्तम पुरुष है, परम सत्य है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि उनके शिष्य का वो लीला कर रहे थे लेकिन उनको पता था, तो उनको वो दक्षिणा देने के लिए बोले, तो फिर भगवान वो समुंदर के पास गए, समुंदर के जो देवता है उनको पूछा उन्होंने, लेकिन समुंदर के देवता ने बताया कि उन्होंने मैंने नहीं लिया उसको, यहाँ पर इस समुंदर में एक पंचजन नामक एक राक्षस रहता है, असुर रहता है, वो एक शंख के रूप में रहता है या शंख के अंदर निवास करता है या उसका शरीर शंख के समान है ऐसे बोलते हैं। तो उसने उसको लेकर गया करके, फिर भगवान क्या करते हैं उस पंचजन राक्षस से असुर को मार देते हैं और उसका जो शरीर होता है या उस जिस शंख में वो रह रहे थे उसको लेकर ले लेते, वही पंचजन ने कहते हैं वो शंख को, तो ले लिया उन्होंने। लेकिन उनके पेट में भी उनके उनके गुरु के पुत्र नहीं थे। फिर आगे भगवान वहाँ पर जाते हैं, जो यम लोग जाते हैं, ऐसे बाद में वो लेकर आते हैं। लेकिन ऐसे भगवान उस पंचजन्य को प्राप्त किया, लेकिन ये सिर्फ लीला है क्योंकि पंचजन्य क्या है वो शाश्वत है। और पंचजन्य ये बजाने के कारण बाद में हम लोग देखते हैं 19वां श्लोक में कि दार हृदयानी व्यधारयत, धृतराष्ट्रस्य हृदयानी व्यधारयत, धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय में कंपन होने लगा, सो भय प्रकट हो गया। भगवान कृष्ण एक बार जब वो यमलोक में गए थे या इसके बाद में ही जब यमलोक में गए वो अपने अपने गुरु के पुत्र को लेकर आने के लिए, वहाँ पर भी जाने के बाद उन्होंने शंख नाद किया। जब वो शंख बजाए तो वहाँ नरक में जो भी बहुत सारे जीव, बहुत सारे कष्ट यातनाएं भोगत रहे थे, तुरंत ही उस ध्वनि को सुनकर मुक्त हो गए। यहाँ पर विरोधाभास रहता है ना, यहाँ पर इनके हृदय में कंपन होने लगा, वो लोग भयभीत हो गए और वहाँ पर क्या हो गए, वो बहुत उनका उद्धार हो गया। क्यों ऐसे हुआ, जैसे हम लोग नाम उच्चारण कर सकते हैं लेकिन हम लोग अपराध भावना, हमारा भावना ठीक नहीं है तो उसका हमें लाभ नहीं मिलता है, लेकिन निरपराध भाव से हम लोग नामों को उच्चारण करेंगे तो तुरंत ही हम लोग भी मुक्त हो जाएंगे। जैसे अजामिल ने लिया तो वैसे ही शंख का जो आवाज़ है उसको हम लोग ऐसे निरपरा क्या है वो असहाय भाव में सुनेंगे। नरक में जीव असहाय भाव से भाव में रहते हैं, कोई उनके सहायता में आते हैं तो उनको बहुत प्रसन्न हो जाता है, तो वो तुरंत ही शरण में वो शरण लेते हैं उनका, तो वैसे जैसे ही सुनते ही वो मुक्त हो गए। और इसका वर्णन सुत गोस्वामी भी पहले स्कंद में वर्णन करते हैं, शंख इस पंचजन्य का। जब भगवान कुरुक्षेत्र या जब हस्तिनापुर आए थे 3 महीने के लिए, जब वापिस गए वो, तो द्वारका के जो द्वार था वहीं पर भगवान ने ये पंचजन्य बजाया। जैसे ही द्वारकावासी ये पंचजन्य को सुने, तुरंत ही उन्होंने समझ लिया कि ये भगवान कृष्ण आ गए और तुरंत ही वो आतुरता से भगवान की ओर अलग अलग जो उपहार लेकर भागने लगे वो, या अलग अलग भेंट लेकर भागने लगे वो। और कितने महीनों से भगवान के विरह में बहुत ही दुखी थे, खिन्न थे वो उससे मुक्त हो गए वो। तो ऐसे तुरंत सुनते ही वो भागने लगे। और सुत गोस्वामी और भी वहाँ पर वर्णन करते हैं कि कैसे लग रहा था शंख भगवान के पंचजन्य, जैसे क्योंकि भगवान के जो अदर होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, वो लाल कमल के समान होते हैं, तो और शंख क्या है ये सफ़ेद रंग का है, एक हंस के समान, बहुत ही मोटे पेट वाले जो हंस के समान लगता है। तो वहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसे एक मोटे पेट वाला हंस वो सुंदर पानी में जो लाल रंग के कमल में खेलता है वैसे ये शंकर खेल रहा था भगवान के अदर के ऊपर, अदर कमल के ऊपर ऐसे। सो सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं और शंख का ध्वनि का भी वहाँ पर वर्णन करते हैं। तो वो शंख का ध्वनि के प्रभाव से द्वारका वासियों में क्या क्या लक्षण हुए उनका भी वर्णन करते हैं। तो कभी आप सुनते हैं तो ये वर्णन सुनते हैं तो आपको लगता है कि ओ हम भी सुनना चाहिए था, है ना? आपको लगा नहीं? क्योंकि हम अच्छा वक्ता नहीं है इसलिए तो ऐसा लगता है। जब मैं पहले कृष्णा बुक में वो 21वां अध्याय है ना, वेणु गीत साउंड ऑफ द फ्लूट, वहाँ पर वो जब पढ़ा था वहाँ पर वर्णन आता है वेणु का ध्वनि से क्या होता है। सब नदियाँ बहना बंद कर देते हैं, जो हरिन बहुत ही चंचल पशु होते हैं वो एक ही स्थान पर स्तब्ध होके उनके कान खुल जाते हैं हम भगवान वेणु बजाते हैं तो। और देवी देवताओं के जो अपने पतियों के साथ जो अप्सराएं हैं या देवियां हैं वो जाते हैं तो भगवान का जो बांसुरी का आवाज़ सुनकर वो लोग भी विचलित हो जाते हैं अपने पति के उपस्थिति में भी। हाँ, तो भगवान के पास जाने के लिए उनके आतुरता आ जाती है। तो ऐसे अलग अलग वर्णन हम लोग सुनते हैं, वो सुन के भी हमें ऐसा लगता है कि वो हम भी सुनना चाहिए था ये आवाज़ ध्वनि करके। हाँ, है ना? हमारा दुर्भाग्य है उस समय पर हम नहीं थे। आप होंगे तो यहाँ पर नहीं होते होंगे। नहीं नहीं, आप प्रचार करने के लिए आए आप थे वहाँ पर, स्वीकार करते हैं। तो ऐसा लगता है, लेकिन प्रभुपाद सांत्वना देते, वहाँ पर भी सांत्वना देते हैं। और प्रथम स्कंद में जब शंख का ध्वनि होता है वहाँ पर भी दोनों जगह सांत्वना देते हैं। तात्पर्य में आप पढ़िए उसको, वो कहते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम,
इसका जो ध्वनि है उस शंख और वेणु का ध्वनि से अभिन्न है बोलते हैं। तो इसको सुनने से वही हमें क्या होगा, अनुभव होगा, होना चाहिए। अभी होता है थोड़ा विकृत रूप में होता है नींद आ जाता है ना तो ऐसे हमें अच्छी तरह से उसको जब हरिनाम करेंगे वो अनुभव होगा हमें एक दिन। वही हमारा लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य, उस ध्वनि को सुनने के लिए, उस हरिनाम को सुनने के लिए, वही हमारा जीवन का लक्ष्य। तब हम लोग असली में हरिनाम का जो ध्वनि जो शब्द है वो सुनते हैं, तब हमें महसूस होगा आज तक मैंने अभी हरिनाम लिया ही नहीं है, ऐसे महसूस होगा उस दिन। तो ये पांच जन्य है भगवान का शंख। तो और देवदत्त वो शंख इंद्र ने दिया था धन अर्जुन को, लेकिन वो भी भगवान नित्य, क्योंकि पिछले श्लोक में दिव्य कहा गया ट्रांसेंडेंटल, वो भी अर्जुन का ही वो नित्य वस्तु है। और यहाँ पर ये नाम जो है उसका भी प्रभुपाद महत्व देते हैं। ऋषिकेश शब्द यहाँ पर संजय फिर से चतुराई से ये शब्द, ये सभी अलग अलग नाम ले रहे हैं। ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं या इंद्रियों को मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन ऐसे मार्गदर्शन कहते हैं वो हमारे शरणागति के अनुसार हमें वो मार्गदर्शन करते हैं। तो अभी इस श्लोक में ऋषिकेश शब्द का महत्व क्या है, क्योंकि अर्जुन भगवान के शरणागत भक्त है इसलिए उनको पूरी तरह से भगवान मार्गदर्शन करेंगे इस युद्ध में। तो इससे संजय कह रहे हैं कि आपको पुत्र को युद्ध में क्या नहीं होगा, विजय नहीं होगा, क्योंकि ऋषिकेश उनके पास है। और धनंजय है, धनंजय मतलब वो सभी दिश, वो पहले राजसूय यज्ञ में जो जन्म की जरूरत होता था, जरूरत था उसको प्राप्त करने के लिए वो युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करके कई सारे राजाओं को जीत के बहुत सारे धन को प्राप्त लेकर आए थे, इसलिए उनका नाम हो गया धनंजय। तो धन को जीतने वाले, संपत्ति को जीतने वाले, तो इसलिए उनका नाम है। तो इस युद्ध में भी एक ये संपत्ति को वो सभी जय मतलब उसको जीतेंगे वो, ऐसे कह रहे। और भीम कर्म वृकोदर, वृक उदर, उदर मतलब उधर, जानते हैं ना पेट। तो वो जो जिनका पेट ज़्यादा मांगता है, तो आप जानते हैं जब वो वो जब उनको जलाया गया था उस हाउस ऑफ लैक मतलब लाक्षागर में, जब उनको जलाने के लिए कोशिश किया गया था, तब वो लोग क्या करते हैं वहाँ से एस्केप होकर वो लोग एक ब्राह्मण के वेश में रहा करते थे एक गांव में। तो ब्राह्मण का क्या होता है, वो लोग भीख मांग कर खाते हैं, वो लोग भीख मांगने के लिए जाते थे, सभी चीज़ इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करके उसका जो आधा भाग है वो भीम को दिया जाता था। फिर भी भीम हर रोज रोता रहता था भूख से, और दूसरा जो आधा भाग था उसमें पांच भाग बनाकर वो लोग सभी चार पांडव और कुंती देवी लिया करते थे। और वहाँ पर एक असुर का भी वो कथा आता है ना, तो असुर को वो आके बहुत सारे लोगों को हिंसा करता था, तब वो गांव वालों ने उनके साथ एक समझौता किया, हम लोग हर रोज एक एक व्यक्ति आएंगे, बहुत सारा जो अनाज बहुत सारा जो व्यंजन है वो बना के लेकर आएंगे, आपको संतुष्ट करेंगे करके। फिर वो जिसके घर में रह रहे थे वो अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते, बच्चा को नहीं भेजना चाहते थे। फिर कुंती देवी ने बताया मेरे पास पांच है, मैं एक को भेज देता हूँ, आप चिंता मत करो। फिर भीम को भेज देते हैं और भीम जाते हैं, और जाने से पहले ही सभी खत्म कर देते हैं उसको। और वहाँ पर वो असुर बहुत भीख से वो बहुत क्रोधित हो जाता है, और आके देखता है कि ये सब खत्म कर रहा है, और उसको मारता है वो गले के ऊपर। अच्छा ठीक है, गला साफ हो गया कर। तो फिर सब कुछ उसको खत्म करके फिर उसको खत्म करता है। तो ऐसे कार्य करते प्रभुपाद उसके इसके तात्पर्य में बोलते हैं वृकोदर मतलब सिर्फ कहने में हम लोग क्या होना चाहिए, दक्ष नहीं होना चाहिए, ऐसे महान कार्य भी करना चाहिए भीम जैसे। तो हाथी के जैसे कहना चाहिए और हाथी के जैसे काम भी करना चाहिए, जैसे सेवा करना चाहिए ऐसे कहते। तो ये इस श्लोक का महत्व है। तो ये सब शब्द चतुराई से बोल रहे, संजय पढ़िए इसको।
इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वो ही समस्त इंद्रियों के स्वामी है, सारे जीव उनके विनाश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है।
तो ऋषिकेश ये मायावादी लोग, वो लोग कहते हैं कि भगवान के पास इंद्रियां नहीं है, वो जो हम लोग अर्पण करते हैं वो कैसे स्वीकार करेंगे, ऐसे वो लोग वर्णन करते हैं, भगवान को निराकार वर्णन करते हैं। फिर उनका नाम क्यों ऋषिकेश पड़ा, वो इंद्रियों का स्वामी क्यों पड़ा, वो सिर्फ इंद्रियों का स्वामी का अर्थ है कि सभी जो जीवात्माओं के इंद्रियों के स्वामी हैं, क्योंकि सबके हृदय में वो परमात्मा के रूप में रहते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयं सर्वभूतानि यंत्रारूढानि। तो ऋषिकेश शब्द का अर्थ है परमात्मा, परमात्मा को ऋषिकेश कहते हैं।
क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रिया का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों की इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं, इंद्रियों का तो वो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर को मारा था। वो गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीला करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है।
तो ये सभी नाम भगवान को कैसे दिया गया है? उनके गुणों के अनुसार, उनके लीलाओं के अनुसार, उनके भक्तों के साथ में संबंध के अनुसार। तो वैसे भगवान के दो प्रकार के नाम होते हैं, एक मुख्य नाम और दूसरा गौण नाम, प्राइमरी नेम्स एंड सेकेंडरी नेम्स। तो गौण नाम वो होते हैं जो इस सृष्टि के संबंध में रहते हैं, जैसे परमात्मा सृष्टिकर्ता, तो ईश्वर, ऐसे परमेश्वर, ये सृष्टि के संबंध में है ना। लेकिन जो मूल मुख्य नाम होते हैं वो आध्यात्मिक जगत में उनकी लीलाओं के संबंध में, उनके गुणों के संबंध में, भक्तों के संग, तो उनके भक्तों के नामों से जुड़े रहते हैं, तो उनको मुख्य नाम कहते हैं। हम लोगों को मुख्य नाम का जप करते हैं, है ना। तो भगवान के तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है।
क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम विकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो अधिक खाते हैं उसी प्रकार वो अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, नहीं भाग्य की देवी श्री थी। अतः
तो ये विशेष शंखों का नाम वगैरह दिया गया है, ये पांडवों के विजय के लिए चिन्ह है, ये सभी प्रेरणादायक है।
अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी, शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी।
सो 16 हम लोग अभी खत्म करेंगे। यू जस्ट नोट डाउन व्हिच एवर इट इज, क्या है वो वो बताए ना, मैंने चर्चा करते वो दार्शनिक गलती नहीं है, लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से ठीक है वो भगवान शरणागत होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो प्रभुपाद ऐसे नहीं लिखा है, ठीक है। सही कहा इट्स नॉट अ फिलोसॉफिकल मिस्टेक, इट इज फिलोसॉफिकल इट इज करेक्ट, बट इट इज नॉट, दैट इज नॉट व्हाट प्रॉपर हैज ओके। सो अगला श्लोक, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषः मणिपुष्पकः।
काशिश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशाकृतदीपते सौभद्रश्च महाबाहो सनातन धर्मो पृथक्कृतः।
तो अनंत यहाँ पर हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सो अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, कुंती पुत्र युधिष्ठिर महाराज के शंख का क्या नाम था? अनंत विजय उनका नाम था। और राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, उनको कुंती पुत्र राजा करके संबोधित किया जाए। दूसरे श्लोक में हम लोगों ने देखा दुर्योधन को भी राजा करके संबोधित किया क्योंकि वो कूटनीति में बहुत ही दक्ष था, इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को भी राजा करके संबोधित किया जाए। वास्तव में अभी तो वो राजा नहीं थे, वो युद्ध के बाद राजा हुए वो, जब सभी कौरवों का हत्या हो गया। लेकिन फिर यहाँ पर राजा क्यों संबोधित किया जा रहा है बताइए? भविष्यवाणी किया गया और वो तो सही है क्योंकि यहाँ पर संजय बता रहे हैं ना चतुराई से। और दूसरा अर्थ ये है कि उनको राजा इसीलिए किया बता रहे क्योंकि इससे पहले उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। तो जो राजसूय यज्ञ करते हैं पूरा दुनिया का सम्राट माना जाता है। जब तक दुनिया के सभी राजाएं उनका अधिकार को स्वीकार किए करते हैं तब तक उनको राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते हैं और उनको सम्राट स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे वो ये ना वो उनके सभा में राजसभा में थे उस समय नारद मुनि आए वहाँ पर ना। उससे पहले उनको वो राजाओं के द्वारा पत्र मिला, संदेश मिला कि आप आके हमें बचाइए क्योंकि वो राजाओं को जरासंध ने 20,000 राजाओं को उन्होंने क्या किया था, जरासंध ने बंदी बनाया था क्योंकि जरासंध काल भैरवी को प्रसन्न करने के लिए 1,00,000 राजाओं को आहुति देने का व्रत लिया था उसने। 20,000 इकट्ठा किया था, अभी और करने वाला था। वो राजाओं ने क्या दिया किया, भगवान कृष्ण को संदेश दिया कि आप हमें आकर बचाइए करके, हम बहुत ही कष्ट परिस्थिति में हैं। तो इसे हमें समझ सकता है कि कैसे दुनिया का व्यवस्थापना कैसे होता था। यहाँ पर राजा मतलब कोई एक गांव का या 8-10 गांव का ऐसे राजा होते हैं। राजा मतलब जनरली 8 या 10 गांव का राजा होते हैं उनको राजा। तो ऐसे राजाओं को, कई राजाओं को उसने इकट्ठा किया था। तो वो उन्होंने पत्र भेजा, उसी समय पर नारद मुनि भी आ गए वहाँ पर और उन्होंने संदेश दिया कि महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं इसीलिए तुरंत आपको वहाँ पर जाना चाहिए, ऐसे उन्होंने संदेश दिया। तो फिर भगवान कृष्ण बोले कहाँ जाऊँ, अभी यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ? ऐसे जब भी ऐसे स्थिति आ जाता है तो भगवान क्या करते हैं, उद्धव को पूछते हैं। उद्धव बहुत ही दक्ष है, वो बृहस्पति के शिष्य है, वो बृहस्पति देवताओं के गुरु, उनसे उन्होंने सभी शास्त्र को अध्ययन किया, उन्होंने धर्मशास्त्र को विशेषकर। तो इसलिए वो सब भगवान को जो समस्या, भगवान के समस्याओं को सुलझा देते हैं उद्धव। तो वो सभी मार्गदर्शन करते हैं राज्य संभालने में वगैरह। तो फिर उद्धव ने कहा उस समय पर, जब तक युधिष्ठिर महाराज सभी राजाओं को मतलब उनको स्वीकार करते, सभी राजा उनको स्वीकार करते हैं, या जो राजा स्वीकार नहीं करते उनको नहीं हराते युधिष्ठिर महाराज, तब तक वो राजस्वी यज्ञ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरासंध क्या है, वो तो वो असुर है, वो तो स्वीकार नहीं करेंगे, तो वैसे तो जरासंध को मारना ही पड़ेगा। इसलिए आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, उन्होंने कहाँ पर क्या बताया उन्होंने, जरासंध के पास जाना चाहिए, नहीं हस्तिनापुर जाना चाहिए। तो यही अंतर है आपके बीच में और उद्धव के बीच कि वो हस्तिनापुर जाइए और वहाँ से भीम और अर्जुन को लेकर जरासंध के पास जाइए और जरासंध को मारने के बाद वो ये राजाओं वो भी मुक्त हो जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, वो भी राजस्वी करने में उनको भी सुविधा हो जाता है, एक ही साथ में दो कार्य हो जाते हैं, ऐसे उन्होंने बता दिया। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब तक सभी राजा उनका हराते नहीं हैं या सभी राजा उनका अधिकार को स्वीकार नहीं करते, तब तक राजस्वी यज्ञ नहीं कर सकते हैं और विश्व सम्राट नहीं बन सकते। लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो पहले ही हो चुके थे, कर चुके थे, इसलिए उनको यहाँ पर राजा युधिष्ठिर कहा है, कुंती पुत्रो राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। सो वो श्लोक भी है, आप चाहे तो उस श्लोक का भी उल्लेख कर सकते, श्रीमद भागवतम दसवा श्लोक के इकहत्तर, दसवें स्कंद के इकहत्तरवा अध्याय के तीसरा श्लोक, जिसमें उद्धव कहते हैं ऐसे कि ये नियम है धर्म के अनुसार। तो नकुल सहदेवश्च सुघोष और मणिपुष्पको, नकुल सहदेव के जो शंख का नाम क्या था, सुघोष और मणिपुष्पको, और काशिश्च परमेश्वास श्रीकंडी च महारथ, काशीराज जो परमेश्वास थे, तो परमेश्वास मतलब परम ईशु आस महान धनुर्धर थे, और शिकंडी भी महारथ थे। सो दृष्टद्युम्न विराटस्य सात्यकीश्च पराजित, सात्यकी जो हमेशा अपजय क्या बोलते हैं, वो कभी पराजित नहीं हुए, तो ऐसे सात्यकी द्रुपद द्रौपदेय द्रौपदी के पुत्र सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्य महाभाव महापराक्रामी, महाभाव सौभद्र के पुत्र जो अभिमन्यु है, वो सब लोग अपने अपने अलग अलग शंख बजाया उन्होंने, ऐसे कहते हैं। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पर चतुराई से बताए उन्होंने टैक्ट, तो चतुराई से हमें प्रचार करते समय में भी चतुराई का उपयोग कर सकते हैं हम लोग, प्रभुपाद भी कभी कभी चतुराई को उपयोग करते थे। वो एक बार एक व्यक्ति ने आया कि आपके ऐसे शिष्य ने उस फलाना फलाना गुरु को मूड बताया है, रैस्कल बताया है, ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत ही गुस्से से आ रहे हैं प्रभुपाद जी के पास। तो प्रभुपाद जी बोले ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसे मैंने तो ऐसे नहीं बताया, जो रैस्कल नहीं है उनको रैस्कल बोलते हैं तो बोलता है तो वही रैस्कल है, ऐसे बोल गया, ऐसे बोल के प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। लेकिन वो संतुष्ट हो गए, फिर प्रभुपाद बोले क्यों रैस्कल नहीं है, वो ग्रंथ उठाया उन्होंने अपने सेल्फ से, वो राधा कृष्णन का ग्रंथ, वहाँ पर वो भगवद्गीता में ना वो बोलते हैं ना, अंदर भगवान के अंदर का तो हमें शरण में जाना चाहिए। तो ऐसे हम लोग गलत अर्थ देते हैं तो हम उनको रैस्कल बोलना चाहिए ऐसे। तो वो व्यक्ति संतुष्ट होकर वापस चला गया। तो ऐसे प्रभुपाद टैक्ट यूज करते थे, फिर भी वो है यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जो खड़ा जोर से प्रचार करना वही सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा है, ठीक है, उसका भी उपयोग है, छतराई का भी। और यहाँ पर लक्षणों से पहले, ये चतुराई से बोलने का लक्षणों से पहले सूचित होता है कि महायुद्ध में सारा कुरु वंश मारा जाएगा। पढ़िए उसको, और दो तीन पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे उसमें।
राष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने के लिए अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा।
तो ये अविवेकपूर्ण नीति है, ये अविवेकपूर्ण बुद्धिमान का लक्षण नहीं है ये, इसे क्योंकि ये सारा कुरुवंश इसमें मारा जाएगा। तो बताया बोले
भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था।
तो ये महायुद्ध, यहाँ पर महायुद्ध बोलते है ना प्रभुपाद, और अनेक देशों के, वास्तव में पूरा दुनिया के सभी राज्यों से राजा क्षत्रिय यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और सभी का हत्या हो गया। तो इसको इसमें 64 करोड़ लोगों का हत्या हो गया। आजकल के महायुद्ध कैसे होते हैं, पहले वो लोग मासूम लोगों को ऊपर बम डाल देते हैं, और वो युद्ध हुआ तो भी हजारों की संख्या में मृत्यु होता है, लेकिन यहाँ पर क्षत्रियों का, जो सही योद्धाओं के बीच में युद्ध होता है, और इतने सारे सभी क्षत्रिय मर गए, और विशेष करके सभी देश के जो राजाएं थे वो आगे जाके वर्णन करने वाले संजय। सो 24वें श्लोक में वर्णन आता है, ये वो मुक्तो ऋषि गुड़ा के भारत योत्स्य मानान देखिए ये तैत्र समागत। सो समागत इकट्ठा हुए है, तो एक श्लोक में वो आगे जाके वर्णन आता है कि कैसे पूरा दुनिया के सभी लोग या सभी राजाएं यहाँ पर इकट्ठा हुए थे क्षत्रिय। तो हम पहले चर्चा कर रहे थे ना, जब भी उनको अवसर मिलता है युद्ध करने के लिए वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अपना जो कला है उसको प्रदर्शन करने के लिए, और युद्ध में मर गए तो भी हम लोग स्वर्ग में जाएंगे ऐसे विश्वास से वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। फिर पढ़िए,
यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने पुत्रों की पूरी जो प्रोत्साहन किया था।
तो ये चिन्ह लक्षण के आधार पर प्रभुपाद यह बता रहे हैं कि ये अच्छा नीति नहीं था धृतराष्ट्र का, क्योंकि ये सब लोगों का हत्या हो रहा है। ठीक है, हम यहीं पर रुकेंगे, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आपका कोई प्रश्न टीका या टिप्पणी है तो कर सकते हैं।
या
वही नियम है क्षत्रियों का युद्ध, वो लोग धर्म को पालन करते हैं तो, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं तो वो लोग चले जाते हैं। और दूसरा चीज क्या होता है, कोई अन्य राजा उनको मार रहे हैं तो वो पापों से उनको मुक्त करते हैं, है ना, वो भी नियम है ना, है कि नहीं। जब राजा किसी को ऐसे दंड देते हैं तो वो पाप से वो लोग मुक्त हो जाते हैं, तो उसके कारण वो लोग ऐसे युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वो प्राप्त करते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। और विशेष करके पहले स्कंद में वर्णन आता है कि प्रभुपाद वहाँ पर वर्णन करते हैं, पहले श्लोक, ये कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जो लोग मर गए भगवान के उपस्थिति में सभी लोग मुक्त हो गए, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद, ऐसे बोला। समझ आ गया, स्वर्ग ही नहीं सब लोग मुक्त हो जाते हैं। और कुछ doesn't want to
sir ek tar ko hum kehne se dar jaate hain fir unhone fir bhi unke uske bina unhone kis se gyan ki rupi mein aake gyan kiya to kaise unko itna gyan mil gaya unke kare
yeah hum log bhi jab aadhyatmik prakti karte hain to वो प्रगति हमारे ऊपर भी नहीं है, सिर्फ गुरु कृपा ही केवलम ही नहीं वो एक अपसंप्रदाय है, गुरु कृपा ही केवलम, आप कुछ भी करते रहो लेकिन गुरु जी कृपा करेंगे, ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यू नो भगवत धाम वापस जाएंगे, ऐसे है एक अपसंप्रदाय है, कुछ नियम का पालन नहीं करते, कुछ नहीं करते है। तो आध्यात्मिक जीवन में या भक्ति में प्रगति करना हमारे ऊपर भी निर्भर है, गुरु का कृपा तो चाहिए चाहिए, तो हमें भी अपने प्रयास से ही मुक्त हो सकते हैं, मतलब अपना प्रयास चाहिए, समझ में आ रहा है, वैसे आपने उन्होंने प्रयास किया तो उस प्रयास के अनुसार उसको मिला, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अर्जुन जैसे योद्धा थे। वो एक चीज नहीं कर पाए अर्जुन, लेकिन अन्य चीज कर सकते थे ना, है कि नहीं, वो एक चीज नहीं कर पाए लेकिन अन्य चीज कर सकते थे ना, ऐसे लोग उसको बड़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं उसका लेकिन फिर भी वो भी जानना उसके जरूरी नहीं था, निषाद, तो इसलिए आए द्रोणाचार्य उसको क्या ले लेते, उसका अंगूठा ले लेते, क्योंकि ऐसे लोग शक्तिशाली हो गए तो संसार में उत्पात हो जाता है, ऐसे ना आजकल टेररिज्म एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, है कि नहीं, आतंकवाद बोलते हैं ना उनको। और कुछ इसका नाम है सैन्य दर्शन, अर्जुन विषाद योग नाम, अर्जुन विषाद योग नाम, अलग अलग आचार्यों ने, परंपरा आचार्यों ने दिया है। तो हम लोग परंपरा आचार्य को मानेंगे, महाभारत में 25वां अध्याय से लेकर 42वां विश्वकर में 42वां अध्याय तक ये आता है भगवद गीता, तो उसका शीर्षक होगा, मैंने देखा नहीं, आप देख के बता दो, लेकिन अभी तो हमारे पास जो है वो अलग अलग आचार्यों ने दिया है उसका नाम, जैसे प्रभुपाद जी ने दिया है नाम अलग अलग अंग्रेजी भाषा में, है ना। और मुख्य नामों के बारे में वो पृथ्वी के ये भौतिक भौतिक जगत के संबंध में नाम दिया जाता है, जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान तो है, लेकिन जनरली जगन्नाथ आपका उसका शब्द का अर्थ लेंगे तो ये जगत के नाथ के बारे में, जगत के संबंध में है। लेकिन जगह हम जो जगन्नाथ लेते वो अलग बात है, वो भी मुख्य नाम है, ठीक है। लेकिन उसका शब्दार्थ देखेंगे तो वो क्या है, गौण नाम। और वो जप नहीं करेंगे संबंध। और नो, जरूरी नहीं था, सभी लोग ऐसे नहीं थे। जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना, क्षत्रिय कभी कभी वो ये भी देखते नहीं कि किसके ओर से लड़ रहे हैं, उनको लड़ना चाहिए, बस लड़ना चाहते हैं। सब इधर उधर हो गए, भक्त लोग इस तरफ है बीच में, जैसे कभी असुर लोग इस तरफ भी है ना, ऐसे है बहुत सारे उदाहरण। वो भी दुखी होते हैं, लेकिन जैसे अर्जुन दुखी हुए थे, अभिमन्यु का जब मृत्यु हो गया, होते हैं वैसे, लेकिन फिर भी उनका हृदय कठोर रहता है। उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, हमेशा खून खून को देखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है आरंभ से ही। जैसे हमारे गुरुकुल के बच्चे नंद गुरु में सांप को मारते हैं, आरंभ से उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता सांप को मार वहाँ पर बहुत सारे सांप आए जस्ट। और वो कौन सा है, वो राजा वो मैं बताऊंगा दूसरे अध्याय में, वो आता है दूसरे अध्याय में आता है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। क्षत्रिय स्पिरिट, बहुत सारा उदाहरण दिया है सर क्षत्रिय स्पिरिट के लिए। हम लोग सबको देने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन वो वही लोग लेंगे जिनके पास योग्यता है ना। लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा स्वीकृति मिलता है, और धीरे धीरे वो स्वीकृति बढ़ने के बाद वो लोग भी योगी बन जाते हैं, है ना। थोड़ा प्रसाद देकर, पुस्तक वितरण करके, ये सब करके उनका भी स्वीकृति बढ़ता है। हरिनाम संकीर्तन में भाग लेके, कभी मंदिर में आए, कार्यक्रम में भाग लिया, ऐसे स्वीकृति बढ़ा के वो भी योगी बन जाते हैं। आप जाते हैं तो सीधा हो जाता है ना। और कुछ हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वो कुछ बोल रहे थे ना।
जैसे मैराथन के समय में आधे घंटे में और बैठ गए थे, तो एक बहुत ही विचित्र टाइप का व्यक्ति था, उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे। वैसे में तुम दिखाया और बहुत गुस्से से उत्तर आया, बोला कहीं भी जाते हैं तुम लोग बहुत डिस्टर्ब करते हो, ये बुक्स में क्या है। सभी बुक्स बोला कितने बुक्स तुम्हारे पास है, तो सभी बुक्स दिखाए। बोला मेरे घर में तुम लोग ने आपको डिस्टर्ब किया, ऑफिस में डिस्टर्ब किया, अभी बम्बई से यहाँ तक चार जगह हो गए, सब एक एक बुक्स मुझे लाओ, सभी बुक्स का एक एक 10 पुस्तक उसने लिया,
सबका एक सैंपल ले लिया उसने। तो भक्त लोग वो लोग नहीं चाहते हैं तो भक्त लोग कृपा कर देते हैं उनके ऊपर।
लेकिन उसने कृष्ण को नहीं देखा बल किया
था। तो पहले से ही उन्होंने उनको उतना आसी गंभीरता से नहीं लिया ना, मूर्ख वही उसका मूर्खता है। पहले से ही गंभीरता से नहीं लिया उन्होंने उनको, वो अवसर था वो, क्योंकि जब हालांकि अर्जुन को अवसर दिया गया, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए ना कृष्ण के पास, तो कोई नारायण सेना ले सकते हैं या किसी को भगवान कृष्ण को चुन सकते, दोनों में से चुनना था। तो अर्जुन ने भगवान को ही चुन लिया, लेकिन दुर्योधन को नारायण सेना मिल गया, फिर भी वो प्रसन्न हो गया क्योंकि वही चाहिए था उसको। तो उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया भगवान कृष्ण को, वो जैसे ये आधुनिक व्याख्याकार सोचते हैं कि भगवान कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है, ज्यादा से ज्यादा एक कुछ शक्तिशाली व्यक्ति है इतिहास में, वैसे आप दुर्योधन भी ऐसे ही सोचता था, वो क्या है हमारे जैसे एक क्षत्रिय है शक्तिशाली, भगवान करके उसको पता नहीं था मूर्ख को, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, आरंभ से ही भगवान को, भगवान उनकी स्थिति को हमें समझाता है। यहाँ पर वही दे, जयस्तु पांडुपुत्राणाम दिव्य शंको प्रदत्मतु हो ऋषिकेश माधव, ये सभी, और वहाँ पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये सबसे हमें क्या मिलता है, आरंभ से हमें ज्ञात हो जाता है कि कृष्ण क्या है, भगवान है करके, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और या वो नहीं थे सेना, ही सिर्फ सेना गया, सेना वो भगवान के सारथी है ना, वो सेना से उनसे कुछ भी ना मिलता, सारथी है। और वो नहीं आए, वो सिर्फ सेना आया, बलराम जी भी नहीं आए ना, हम भी मैं युद्ध में नहीं भाग नहीं लगे, ऐसे इसलिए वो तीर्थ यात्रा में चले गए। भगवान के जो नित्य पार्षद है इसमें ले भाग नहीं लेते। और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।